जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 72। तो मेरे पीछे आप सब दोहराएंगे, कच्चित क्या एतत् या श्रुतम सुना गया पार्थ हे पृथा पुत्र त्वया तुम्हारे द्वारा एक अग्रेण एकाग्र चेतसा मन से कचित क्या अज्ञान का सम्मोह मोह ब्रह्म प्रणष्ट दूर हो गया ते तुम्हारा धनंजय हे संपत्ति के विजेता अर्जुन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। क्वचित एतत् श्रुतम पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा क्वचित ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। भाषांतर और भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे पृथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? तात्पर्य, भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवद गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवद गीता बताने को तैयार है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवद गीता को सुनता है उसका सारा ज्ञान दूर हो जाता है। भगवद गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है, जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। कितना सुंदर भगवान और प्रभुपाद जी समझाते हैं यहाँ। तो मैं आगे आगे सब कुछ पढ़ूंगा और उसका हम निरूपण करेंगे। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण धनंजय पृथा पुत्र श्री अर्जुन को सवाल कर रहे हैं कि क्या तुमने मैंने अभी तक कहा जो शास्त्र गीता का ज्ञान मैंने आपको किया, तो क्या आपने एकाग्र चित्त होकर सुना कि नहीं सुना, और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? तो अर्जुन को सवाल कर रहे हैं भगवान। तो अर्जुन आगे वाले श्लोक में जवाब देंगे, लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु का काम कर रहे हैं। तो गुरु का काम है कि अज्ञान को मिटाना, और पाप को मिटाना। गुरु का दो कार्य हैं, एक है अज्ञान को मिटाना और दूसरा है कि पाप को मिटाना। अज्ञान को मिटाना कैसे मिटाते हैं, तो ज्ञान देखें। और ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्थ होता है तीन चीजें। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान की परिभाषा तीन चीजों से होती है, कंप्लीट परिभाषा। एक तो है चैतन्य महाप्रभु ने ये दिव्य ज्ञान की परिभाषा चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20-21-22 चैप्टर में की है। वो है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो हमें हमारा संबंध श्री कृष्ण से नाता और ये जगत जड़ जगत से हमारा नाता क्या है वो समझना चाहिए। तो श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, जीव तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। अर्थात जीव कृष्ण का दास है, कृष्ण का सेवक है, कृष्ण के साथ उनका डायरेक्ट संबंध है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जीव कृष्ण का अंश है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मनसष्टानिन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो जीव कृष्ण का दास है और इसीलिए दास है कि वो श्री कृष्ण का सनातन अंश है। तो अंश अंशी का अंशी की सेवा करता है, जैसे कि हाथ है शरीर की सेवा करता है तो हाथ को आपो आप रुष्टि पुष्टि आती है। लेकिन हाथ दूसरे शरीरों को देता रहे तो उनको पुष्टि तुष्टि संतुष्टि नहीं हो सकती। तो इसी तरह हम कृष्ण के अंश हैं और इसलिए हमें श्री कृष्ण की सेवा दासत्व करना ही चाहिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, अर्थात हमारा जन्म सिद्ध हक, या तो हमारी स्वाभाविक परिस्थिति, हमारा स्वाभाविक स्थान ये है कि श्री कृष्ण की हम सेवा करें ताकि हमें आपो आप रुष्टि पुष्टि आनंद सुख शांति समृद्धि सब कुछ ऑटोमेटिक मिले। तो ये दिव्य ज्ञान का एक वन थर्ड भाग समझना कि मैं जीव हूँ और कृष्ण का दास हूँ, इसलिए मुझे श्री कृष्ण की सेवा करनी ही चाहिए, ये संबंध है। दूसरा संबंध है हमारा भौतिक जगत से। तो भौतिक जगत माया है, माया का अर्थ है कि भौतिक जगत ये मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ है जगत है सच्चा लेकिन वो टेम्पररी है, अर्थात क्षणिक है। ये जगत में हमें सुख मिलता है, इंद्रिय तृप्ति से कुछ सुख जरूर मिलता है, लेकिन वो बहुत क्षणिक है और ये सुख के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न पहले करना पड़ता है क्षणिक सुख के लिए, और बाद में ये क्षणिक सुख दुख देके जाता है क्षणिक सुख। तो इसका मतलब ये है कि ये स्वाभाविक सुख नहीं है, ये वास्तविक सुख नहीं है, ये काल्पनिक सुख है और वाकई में ये काल्पनिक सुख है और इल्यूजरी है। जैसे माया ये जो हम आज क्लास ले रहे हैं उसमें ज्यादातर भगवान और मुकुंद माला सूत्र में कुलशेखर राजा भी माया की परिभाषा ज्यादा करते हैं, तो हम माया को भी आज समझेंगे बहुत अच्छी तरह। तो ये माया है, इल्यूजन, कि ये चपल सुख संसारी का संसार का सुख ही बहुत सुखदायी है, ये अज्ञानता है। तो ये संबंध, संबंध भगवान कृष्ण से जीव का संबंध, और जीव का संबंध ये माया या जड़ जगत से। ये जड़ जगत है, निरानंद है, उसमें आनंद नहीं है, इल्यूजरी हैप्पीनेस। हमें वास्तविक सुख का अनुभव नहीं होता, काल्पनिक सुख का अनुभव होता है, और वो काल्पनिक सुख हम सच्चा समझ लेते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण देते हैं कि जो ऊंट होता है, ऊंट, वो ऊंट थॉर्न खाता है, स्पाइकी थॉर्न, स्पाइक्स, कांटे वाला थॉर्न खाता है। तो कांटे से जब वो खाता है तो उनका दूध और ये सब कुछ मिला के, और उसमें कांटों से उनके गले में खून निकलता है, तो खून एक थॉर्न में चबाने से खून उनमें मिलता है, तो बहुत मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो ऊंट समझता है कि ये थॉर्न ये बहुत मीठा है, सुंदर है, मधुर है, स्वादिष्ट है, लेकिन स्वाद आता है उनके लहू का, खुद के लहू का स्वाद आता है। तो वो इल्यूजन, ये अज्ञानता है, ज्यादा खाता है, ज्यादा स्वाद, ज्यादा खाता है, ज्यादा सारा गला बिगाड़ देता है, तो ये स्वाद के लिए। तो ये है माया, माया, माया जो नहीं है वो समझ में आता है, वास्तविक में जो नहीं है वो समझ लेते हैं हम। वास्तविक है, वास्तविक में ये लहू का टेस्ट है, लेकिन समझता है थॉर्न का टेस्ट है। तो ऐसे ही संसारी, ये संसार में सुख ऐसा इल्यूजरी सुख समझता है। संसारी नो सुख एवु जाजवाना नीरज एवु पर्णी ने रंडाऊ रे। तो संसारी का सुख जाजवा के नीर जैसा है, अर्थात मृग मरीची जैसा है। जैसे इन डेजर्ट ये मृग रण में दूर दूर पानी देखता है, और तृष्णा है उनको, बहुत प्यासा है मृग, तो वहां दौड़ता है, और जैसे भी वहां जाता है तो वहां पानी नहीं है, और दूर पानी भागता है, दूर पानी दिखाई देता है, वहां भागता है, वहां भागता है, भागता रहता है। अंत में तृष्णा से वो मृत्यु को पामता है, न पानी मिलता है, न तृष्णा छिपती है, मृत्यु आता है। उसी तरह हम जीवों का ये संसारी संसार में दौड़ धाम जो हम करते हैं, दौड़ भाग दौड़ करते हैं, वो ऐसा ही सुख है। संसारी नो सुख है वो झांझवाना नीरज वो परणी ने रंडा हुए, और शादी करके फिर विधवा या विदुर बनना, तो ये सब परणु तो प्रीतम प्यारो अखंड सौभाग्य मारो। मीरा कहती है अगर शादी ही करनी है तो कृष्ण से क्यों ना करूं, कि जो अमर है, जो मरने वाला नहीं है, और मेरा सौभाग्य, मेरा सुख हमेशा के लिए रहेगा। तो ये संसारी इल्यूजरी हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ। तो क्या भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, क्या आपको गीता का दिव्य ज्ञान समझ में आया? तो दिव्य ज्ञान क्या है? एक तो जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हमारा संबंध जड़ जगत से क्या है, हमारा संबंध दिव्य जगत से क्या है। ये संबंध बाद में अभिधेय, अभिधेय वो प्रोसेस है, वो विधि विधान है, वो प्रैक्टिस है, जिससे हम हमारा वास्तविक उच्च लक्ष्य प्राप्त कर सके। हमारा उच्च लक्ष्य है श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, तो उसके लिए विधि विधान, उसको अभिधेय बोलते हैं। तो विधि विधान है नवडा भक्ति से भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। नमाम साधयति योगो सांख्यम धर्मम उद्धव न स्वाध्याय तप त्यागो यथा मम भक्तिर ऊर्जिता। मैं भक्ति से जैसा प्रसन्न होता हूँ वैसा स्वाध्याय से, शास्त्रों का अध्ययन से, तप से, त्याग से, संन्यास से, दान से मैं प्रसन्न नहीं होता। किससे प्रसन्न होता हूँ? यथा मम भक्तिर ऊर्जिता, मेरी भक्ति से। भक्ति के 9 अंग है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति से मैं प्रसन्न होता हूँ। तो यह प्रोसेस अभिधेय और प्रयोजन है श्री कृष्ण का प्रेम संपादित करना, पूर्णतया अपने हृदय में जागृत करना। तो उनकी सेवा से ये प्रेम मिलेगा, ये भक्ति ये सेवा है। तो सेवा करने से हमें उनका प्रेम मिलेगा। इफ यू सर्व डॉग, डॉग विल लव यू। इफ यू सर्व गॉड, गॉड विल लव यू। तो 9 भक्ति स्पेशली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु कलयुग में भगवान की सबसे ऊंची सेवा कहते हैं। मुख से और जीभ से भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करना, 16 माला हर रोज और जितना हो सके अर्ली पार्ट ऑफ द डे। तो यह है रीत, ये प्रोसेस है जिससे हमें श्री कृष्ण प्रेम मिल सकता है। तो भगवान कहते हैं कि क्या आपको ये गीता का ज्ञान समझ में आया? तो ये वास्तविक गुरु से हमें ज्ञान समझना होगा। वास्तविक गुरु का अर्थ है प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक गुरु का अर्थ है श्री कृष्ण से बनी हुई इंटैक्ट नट अतुट गुरु परंपरा में जो हम ज्ञान लेते हैं, तो उनको वास्तविक गुरु से ज्ञान लिया ऐसा हम कह सकते हैं। अनलेस अंटिल कोई भगवान कृष्ण का भक्त हो तभी ये भगवान की वाणी का जो ज्ञान है दे सकता है। इधर उधर भटकने से, लटकने से काम नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक प्रामाणिक भक्त जो गुरु परंपरा में हो उनसे गीता का ज्ञान लेना चाहिए, जैसे कि गोप किशोरी। तो ये आप सबको समझा रही है। तो ये गुरु परंपरा में उनका ज्ञान है, मेरे से उनने ज्ञान लिया है और लेक्चर्स और एसोसिएशन। और गुरु भी किसी शिष्य को कहता नहीं कि उन शिष्य का वो कल्याण कर रहा है। वास्तविक में गुरु दूर से बैठे बैठे भी हर एक शिष्य का कल्याण करता है। बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। एक प्रज्वलंत उदाहरण है कि वो भक्ति करके, भगवान को प्रार्थना करके अपने शिष्यों का कल्याण करवाता है। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्गुणवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ही अटेन्स द कल्याण, द सुख शांति समृद्धि फॉर हिज डिसाइपल। ही प्राप्तस्य, ही गेट्स फ्रॉम कृष्णा एंड देन ही गिव्स टू हिज डिसाइपल्स। सो गुरु कोई कहता नहीं, लेकिन ये हर समय, हर घंटा, हर पल ये गुरु का कार्य, एकमात्र कार्य होता है अपने शिष्यों का कल्याण करना। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु से हमें भागवत गीता समझनी चाहिए। तो आइए, ये सवाल किया अर्जुन को, अभी अर्जुन जी क्या कहते हैं वो समझते हैं। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। अर्जुन उवाच नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो अर्जुन यहां वो सवाल किया, भगवान ने उनका जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरा मोह दूर हो गया, अर्थात मेरी माया चली गई। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिली है और सम्मूढ़ चेतसा, अर्जुन कहते हैं कि मैं मूढ़ हो गया हूँ, मेरी स्मृति चली गई है, मेरी बुद्धि चली गई है और मैं सम्मूढ़ चेतसा हो गया हूँ। तो यह कहते हैं कि मैंने मेरी स्मृति लब्धवा, मैंने मेरी स्मृति फिर से वापस प्राप्त की है और मेरा मोह नष्ट हो गया है। ये मोह क्या है आगे तात्पर्य में हम सीखेंगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और स्थितोस्मि गत संदेह, और निसंदेह मैं मेरी स्थिति में स्थित हो चुका हूँ। करिष्ये वचनम तव, और उन स्थिति में मैं आपका वचन का पालन करूंगा। सो तात्पर्य, जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करे, वह आत्मा अनुशासन संशयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बन जाता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है, उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव भूल जाता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का सेवक है, ये भूल जाता है। लेकिन वास्तविक ज्ञान ये है कि जीव कृष्ण का दास ही है, और जब समझ लेता है तो वो मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है, उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। तो इधर युग सर कृष्ण और सर माया, माया मीन्स इल्यूजन, आगे प्रभुपाद जी सारा माया पर कह रहे हैं। यदि वह परमेश्वर को सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रहता है कि भगवान का वो नित्य दास है। लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से ये बंधन में पड़ जाता है। जब माया की सेवा करता है तो वो बंधन में पड़ जाता है, और माया का उग्र स्वरूप है कांचन और कामिनी, हनी एंड मनी, मतलब स्त्री और पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। तो ये माया है, और मनी, मनी मतलब होर्डिंग, मनी यूज इन कृष्णस सर्विस इज नॉट माया, लेकिन होर्डिंग मनी इज माया। तो इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है, वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है, यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पास यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता, वह इस पर विचार नहीं करता। इसलिए यही माया का अंतिम पास होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान कृष्ण को समझना है और उनके आदेशों अनुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। तो जीव हमेशा मोह और माया में रहता है, तो भगवान अमीन प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि जीव का अंतिम पास या अंतिम माया का बंधन ये है कि वो समझता है मैं ही ईश्वर हूँ, मैं पैसा कमाऊंगा, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी मया लब्धवम इमम, मैंने ये आज कमाया, मैं कल इतना कमाऊंगा, मैंने ये आज लाभ किया, कल इतना लाभ करूंगा, मैंने इस शत्रु को मारा, कल इतने शत्रुओं को मारूंगा, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, ये सब जीव सोचता है। तो ये सब माया है, माया का मार है ये। लेकिन वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है। तो हमें माया से मुक्त होना हो तो हमें भगवान कृष्ण को समझना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, उनके आदेशों अनुसार कर्म करने के लिए सहमत होना पड़ेगा। तो भगवान का आदेश है कि कली काले कृष्ण नाम रूप अवतार नाम लेते हैं सर्व जगत निष्ठार। कलयुग में कृष्ण का नाम के रूप में अवतार हुआ है और ये नाम लेते हुए जीव का सर्वांगी कल्याण निष्ठार होता है। तो ये भगवान कृष्ण का आदेश है, और हमें हर रोज खबरदार होके 16 माला करनी चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र की। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है। प्रत्येक जीव, तो वास्तविक ज्ञान क्या है कि मोह से उल्टा, कि मैं जीव हूं और कृष्ण का शाश्वत दास हूं। लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं है अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। वह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी होता है। तो मोह ग्रस्त जीव प्रभुत्व जमाना चाहता है और माया की सेवा करना चाहता है, लेकिन वास्तविक शुद्ध भक्त होता है वो भगवत कृपा और भगवान श्री कृष्ण का की सेवा में संलग्न रहता है हमेशा। तो ये मोह है। मोह का अर्थ है कि इल्यूजन अराइजिंग फ्रॉम इंटेंस अटैचमेंट टू हनी एंड मनी। हिंदी में मोह का अर्थ है कि कांचन और कामिनी में गूढ़ आसक्ति, बहुत आसक्त हो जाना और वास्तविक ज्ञान को भूल जाना। वास्तविक ज्ञान है कि मैं श्री कृष्ण का सेवक हूँ और मुझे उनकी सेवा भक्ति करना चाहिए, ये वास्तविक ज्ञान है। कृष्ण के आदेशों अनुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्व संपत्तिवान है। जो ज्ञानमय है भगवान और सर्व संपत्तिवान है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि कृष्ण ही स्वामी है और वो ज्ञानमय है और वो ही सर्व संपत्ति के मालिक है, सर्व ईश्वरियों के मालिक है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। तो भगवान कृष्ण हम सब भक्तों को वो चाहे वो दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ईश्वरियों एवं शक्तियों से पूर्ण है। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल भगवान, भगवान कृष्ण के अनेकों गुण हैं, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ गुण उनका है वो भक्त वत्सलता और भक्त वश्यता, भक्त को वत्स वश्य वश में है, भक्त के वश में भगवान रहते हैं। अहम भक्त पराधीनो ही असत्व अस्वतंत्र एव द्विज, मैं अस्वतंत्र हूं और भक्त से भक्त को अधीन हूं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण का अर्थ है हमारा सब सब कुछ आत्मनिवेदन। तो भगवान भक्तों को आत्मनिवेदन करते हैं। अगर ऐसे शुद्ध भक्त गोपियों जैसे हनुमान जी जैसे शुद्ध भक्त हो, प्रहलाद जैसे, पांडवों जैसे और ऐसे अनंत कोटि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो ऐसे भक्तों को भगवान आत्मसमर्पण करते हैं। भगवान उद्धव को कहते हैं 11वां स्कंद 14वां अध्याय 15वां श्लोक कि मुझे न यथा मे प्रियतम न आत्मयोनिर न संकरो न संकर्षणो न श्री न इवात्मा यथा भवान। जैसे आप जैसे भक्त मुझे प्रिय हैं, वैसे मुझे मेरे पुत्र ब्रह्मा, मेरी आत्मा शंकर और मेरे भाई संकर्षण बलराम और मेरी पत्नी श्री लक्ष्मी राधा रानी, या तो मेरा खुद का आत्मा भी मुझे इतना प्रिय नहीं है जितना आप जैसे भक्त मुझे प्रिय है। तो ये आत्मसमर्पण भी कर सकते, भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी गुण है। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है, वह भक्त नहीं है बल्कि माया का सेवक बन जाता है। ये नहीं जानता कि भगवान भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, तो वो माया का सेवक बनता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवद गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है, और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतएव भगवद गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। अब जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक बुद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए उनका धनुष बाण ग्रहण कर लिया। तो यह है आत्मसमर्पण। अर्जुन ने आत्मसमर्पण किया अपने संबंधी जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्मदेव और कजिन ब्रदर्स और अपने भाई सब को छोड़ छाड़ के एक भगवान का आदेश सुन के उनने युद्ध शुरू किया। तो ये है सरेंडर, शरणागति। शरणागति का अर्थ है भगवान और आपके भक्त गुरु के लिए समर्पण। होल लाइफ हमें गुरु और कृष्ण को देनी चाहिए। तो ये आत्मसमर्पण। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् अच्युत। तो भगवान का प्रसाद से, भगवान की कृपा से अर्जुन को मोह चला गया, माया चली गई और उनको स्मृति आ गई और वो स्थितोस्मि गत संदेह और अपने आप में वो स्थित हो गए और करिष्ये वचनम तव, और कहते हैं कि मैं आपका वचन का सपूर्णतया पालन करूंगा। तो यह है शरणागति और भगवान की भी शरणागति। भगवान भक्त को शरणागत होते हैं, भक्त भगवान को। और बहुत बड़ा ऊंचा दिव्य नाता है और उसमें ही उसमें ही सुख आनंद और समृद्धि और सब कुछ ब्लिस, टोटल ब्लिस इज इंक्लूडेड इन सरेंडरिंग टू कृष्णा एंड गुरु. कोई सवाल? समस्त जीवों के अधीक्षक का अर्थ है कि सबके कंट्रोलर, सबके ओनर, सबके मालिक, सबको सबको नियंत्रित करने वाले, तो ये उनका अर्थ है कि भगवान सबके नियंत्रक, सबके मालिक, सबके स्वामी, सबका कर्ता धर्ता हर्ता माता पिता, यस्य जगतो माता धाता पितामह, तो सब कुछ भगवान है, इनका अर्थ है. राइट. तो उसका अर्थ है कि उसका मोह जब नष्ट हो जाता है तो परमेश्वर श्री कृष्ण को वो शरणागत हो जाता है और वो भगवान, भगवान के प्रतिनिधि ये जो कहते हैं उसके अनुसार वो चलते हैं तो वो सुखी हो जाते हैं. तो ये सुख, सुख का शाश्वत सुख का ये मार्ग है कि हम भगवान और भगवान के भक्तों को समर्पित रहें, तो तभी हमें सुख शांति समृद्धि और आनंद और सब कुछ मिल सकता है. अगर हम माया के पीछे पड़ते हैं तो माया हमें दुख देती है. हम समझते हैं हम लोग कि माया हमें सुख दे रही है, लेकिन वो सुख सुख नहीं है, दुखी करती है. तो जीव भगवान को सरेंडर हो जाता है, शरणागति स्वीकारता है, स्पेशली भक्तों की, गुरु की, कृष्ण की, लाइक दैट. मुक्त पुरुष का अर्थ है कि इहार यश्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते. जो अपनी मन वाणी शरीर से श्री कृष्ण की हमेशा 24 घंटा सेवा करता है तो उनको मुक्त, ये आजीवन मुक्त कहता है. मतलब कि ये जीवन में ही वो मुक्त हो जाता है. तो ये मुक्त पुरुष है कि जो श्री कृष्ण की मन वाणी शरीर से हमेशा सेवा में रत रहता है, वो मुक्त पुरुष है. भक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति. मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, तो मुक्ति का अर्थ है कि हमारे स्वरूप में स्थित हो जाना. हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का हमेशा दासत्व करना, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्थिति है हमारी. और दासत्व का अर्थ है भगवान की भक्ति में स्थित हो जाना. कैसे भक्ति करना है? मन वाणी और शरीर से श्री कृष्ण की हमेशा भक्ति करना. तो ये इनको वास्तविक मुक्ति कहा गया है. मुक्ति 5 प्रकार की है, लेकिन ये वैष्णव मुक्ति है. वैष्णव मुक्ति मीन्स भक्ति में स्थित हो जाना. मुक्ति का 5 प्रकार है कि साष्टी, भगवान के धाम में रहना, भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त करना और भगवान के निकट रहना, भगवान के धाम में रहना और ऐश्वर्यों का मालिक, 6 ऐश्वर्यों के मालिक होना, ब्रह्म में लीन हो जाना, उनकी ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, ये सायुज्य मुक्ति है, निराकारवादियों की मुक्ति है. और दूसरी 4 मुक्ति है वैष्णव की है. लेकिन रियल मुक्ति का की परिभाषा मैंने आगे की कि भगवान की भक्ति में स्थित हो जाना मन वाणी शरीर से, उनको मुक्ति कहते हैं. तो वास्तविक कार्य उसके लिए चेक एंड बैलेंस है. शास्त्र, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न सुखम वाप्नोति न सुखम न परम गति. शास्त्र, साधु और गुरु, ये इन तीनों को, तीनों की अनुमति मुताबिक काम करना वो वास्तविक कार्य है. वो तो, और उससे उल्टा करना वो मोह में है, माया में है. तो हमें ये इसलिए हमें आगे बड़े चढ़े भक्तों का, गुरु का, कृष्ण का वचन का हमेशा पालन करना चाहिए. शास्त्रों में अनेक बातें हैं, तो वो गुरु से चेक करके, या तो वैष्णव जो अपने वैष्णव जैसे गोपकेशरी उनके उनके साथ सलाह सुधन करके हमें आगे कार्य करना चाहिए, समझना चाहिए। तो हमारा जो फॉल्स ईगो है, हमारा सब कुछ है, वो भक्तों को देके रखें, तो हम समझ सकते हैं कि हम कौन सी माया में, कितनी माया में, कहाँ है, कैसे है। और जैसे माया छूटेगी आनंद आएगा, चाहे ज्यादा पैसा हो कम हो, चाहे बड़े महल में रहते हैं या झोंकी में रहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति में वो मुक्त हो जाता है, उनको आनंद की सीमा नहीं रहती। मुकुल माला सूत्र छठवां श्लोक पढ़ूंगा। दिवी वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रका मम अवधीरित सारदार विंदौ चरणौ ते मरणेपि चिंतयामि। अनुवाद। नरकासुर का वध करने वाले हे प्रभु, आप जहाँ भी चाहें देवलोक, मृत्युलोक या नरक में मुझे निवास दें। मेरी एकमात्र यही विनंती है कि मृत्यु के समय मैं आपके उन युगल चरण कमलों का स्मरण कर सकूं, जिनका सौंदर्य शरतकालीन कमल को चुनौती देने वाला है। शरद दास हे साधु जात सत सर सिर सिजेद श्री मिशा दिशा। तात्पर्य तो पहले अनुवाद में तो बराबर समझेंगे हम लोग कि नरकासुर का वध करने वाले हे प्रभु कृष्ण, आप जहां भी चाहें देवलोक में, मनुष्यलोक या नरक में मुझे निवास दें, मुझे कोई इसकी फिक्र नहीं है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मेरी एकमात्र यही विनंती है कि मृत्यु के समय मैं आपके उन युगल चरण कमलों का स्मरण कर सकूं, जिनका सौंदर्य शरतकालीन कमल को चुनौती देने वाला है। तो मेरी एकमात्र विनंती प्रार्थना है कि मुझे अंत समय आपके युगल चरणों का स्मरण रहे, जो नील कमल शरतकालीन कमल से भी ज्यादा ज्यादा सुंदर है आपके चरण कमल, उनका स्मरण मुझे रहे। तो ये मेरी विनंती है, चाहे मैं नरक में हूं, मनुष्य लोक में हूं, देवलोक में हूं, जहां भी आप रखें। तात्पर्य, जैसा कि इसके पूर्व कहा जा चुका है, भगवत भक्त को न तो संसारी धर्म, आर्थिक उन्नति, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष से कोई वास्ता रहता है, न ही उसे इसकी चिंता रहती है कि उसका भौतिक जीवन स्तर उच्चतम है या निम्नतम। उसके लिए स्वर्ग तथा नरक एक समान है। वह भगवान की सेवा करने के लिए नरक जाने से भी भयभीत नहीं होता, और न ही भगवान की सेवा के बिना वह स्वर्ग में रहने से प्रसन्न होता है। किसी भी परिस्थिति में उसकी चेतना भगवान के उन चरण कमलों पर स्थित रहती है, जिनका सौंदर्य संसार के सुंदरतम कमल पुष्प को भी मात देने वाला है। तो सुंदर बात कर रहे हैं यहाँ किंग कुलशेखर। क्या कह रहे थे कि भगवान का भक्त चाहे नरक में हो, सरग में हो, स्वर्ग में हो, या भौतिक जगत पृथ्वी या भगवान के धाम, जहां भी हो वो एक ही चीज चाहता है, वो भगवान के सुंदर कमल सदृश पाद पद्म वो चाहता है। अर्थात भगवान के चरण कमलों में ही सब सुख है, वो समझ के वो भगवान के चरण कमलों का सुख चाहता है, वो अपना स्वर्ग या नरक का, या बहुत धनी या बहुत गरीब या कुछ भी परिस्थितियों में वो एक ही चीज चाहता है, वो है भगवान के दो चरणारविंद, जो सुखदाई है, जो आनंददाई है, जो अभय प्रदान करने वाले हैं, उन चरण कमलों का आश्रय चाहता है। आगे पढ़ता हूँ। यह चनौती भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि की दिव्य स्थिति के कारण है। इस चुनौती मतलब कि भगवान का भक्त कोई भी परिस्थिति में सुखी आनंद रहता है, चाहता है, रहता है। क्यों? यह चुनौती भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि की दिव्य स्थिति के कारण है। श्रुति मंत्र तो दिव्य स्थिति के कारण कि नाम रूप लीला गुण धाम में भगवान का भक्त हमेशा निमग्न डूबा हुआ रहता है, इसलिए उनको कोई भी परिस्थिति स्वर्ग की हो या नरक की हो वो परिस्थिति उनको उलझा नहीं सकती, क्योंकि वो स्थित हो चुका है भगवान की भक्ति में, आनंद में। श्रुति मंत्र घोषित करते हैं कि यद्यपि भगवान के हाथ नहीं होते किंतु वे हमारे द्वारा भक्तिपूर्वक अर्पित की गई कोई भी चीज स्वीकार कर सकते हैं। यद्यपि उनके पांव नहीं होते किंतु वे कहीं भी जा सकते हैं, अपाणी पादो जब अनुग्रहिता। यद्यपि उनके नैतिक भौतिक नेत्र नहीं होते किंतु वे बिना किसी अवरोध के कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता उनके प्रत्येक इंद्रियों को सर्वशक्तिमान बताती है। संसारी नेत्र देख सकते हैं किंतु सुन नहीं सकते, किंतु भगवान के नेत्र देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं आदि आदि। भगवान के अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमन्ति, उनके एक एक अंग हर एक अंग का काम कर सकता है। श्रुति मंत्र कहते हैं कि वे भौतिक प्रकृति पर अपनी दृष्टि डालकर उसे जीव रूपी बीजों से गर्भित बना देते हैं। उन्हें माता प्रकृति के साथ किसी प्रकार का समागम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे कि जीव उसके गर्भ से उत्पन्न हो और वे उनके पिता बने। अतः अपने अनेक भक्तों के साथ भगवान का कोई भी संबंध, चाहे वह पितृत्व का हो या पुत्रत्व का या अन्य कोई, रंच भर भी भौतिक नहीं होता। भगवान शुद्ध आत्मा है और जब कोई जीव अपनी शुद्ध आध्यात्मिक स्थिति में होता है तभी वह उनके साथ सभी प्रकार के संबंध रख सकता है। अल्पज्ञ दार्शनिक भगवान तथा पूर्ण आध्यात्मिक जीवों के मध्य के इन सकारात्मक आध्यात्मिक संबंधों की कल्पना भी नहीं कर सकते, और इस तरह वे केवल भौतिक संबंधों का निषेध करने के रूप में ही सोचते हैं। इस तरह ऐसे दार्शनिक स्वभावतः निर्विशेषवादी की परिकल्पना की को अपना लेते हैं। इसके विपरीत राजा कुलशेखर जैसे शुद्ध भक्त को पदार्थ तथा आत्मा दोनों का पूर्ण ज्ञान होता है। वे यह नहीं कहते कि प्रत्येक भौतिक वस्तु मिथ्या है, फिर भी उन्हें स्वर्ग से लेकर नरक तक की किसी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। वे भगवद गीता के इस कथन को पूरी तरह समझते हैं कि ब्रह्मांड के निम्नतम लोगों से लेकर सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक तक ऐसा कोई आध्यात्मिक आनंद नहीं है जिसके लिए जीव लालायित रहते हो। इसलिए शुद्ध भक्त आध्यात्मिक जीवन से पूरी तरह ज्ञात होते हुए एक ही समय भौतिक संबंधों का परित्याग करता है और ईश्वर के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध का अनुशीलन करता है। दूसरे शब्दों में भक्त का आध्यात्मिक ज्ञान उससे न केवल भौतिक अस्तित्व का परित्याग करता है अर्पितु नित्य सकारात्मक आध्यात्मिक अस्तित्व की वास्तविकता का ज्ञान भी प्रदान करता है। इस प्रार्थना में राधा कुरुक्षेत्र कुलशेखर इसी ज्ञान को व्यक्त कर रहे हैं। तो भक्त आध्यात्मिक ज्ञान लेके उस सब भौतिक अस्तित्व का परित्याग करता है। भौतिक का अर्थ है भूतों के संलग्न में, भूत है पंच महाभूत, तो वो भूत है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो उनका जो भी बना है उनको वो महत्व नहीं देते हुए आध्यात्मिक को वो महत्व देता है। आध्यात्मिक करते हैं भगवान आत्मा परमात्मा के संबंध में जो चीजें हैं उनको वो महत्व देता है, अर्थात वो माया से छूट जाता है और भगवान की भक्ति सेवा, भगवान के भक्तों की भक्ति सेवा में लग जाता है और वो परम सुख को प्राप्त करता है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परम गति। वो कामकारत नहीं वर्तता, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने भौतिक सुखों के लिए भागदौड़ नहीं करता, लेकिन भगवान के भक्त और भगवान की सेवा पूजा अर्चन संग नाम रूप लीला गुण धाम का ग्लोरिफिकेशन में हमेशा निमग्न रहता है, प्रवृत्त रहता है। तो इसलिए उनको स्वर्ग अपवर्ग नरक के सुतुल्यार्थ दर्शिन, उनके लिए स्वर्ग नरक और भौतिक जगत ये पृथ्वी का सुख सब कुछ एक तुल्य रहता है। तो यह है भगवत भक्ति में हमेशा के लिए स्थित हो जाना, जहाँ सुख ही सुख आनंद ही आनंद का जीव अनुभव कर सकता है। स्वर्ग नरक मृत्यु लोक, जहाँ मृत्यु सबका निश्चित है, तो मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक देवों का भी मृत्यु है, स्वर्ग में भी मृत्यु है, नरक में भी मृत्यु है, पृथ्वी भी मृत्यु है। तो उसका मतलब होता है ये भौतिक जगत। देवता लोग मरते हैं वो चौकस निश्चिंत रूप से मरते हैं, इंद्र भी पोस्ट हैं, ब्रह्मा भी पोस्ट हैं, और उनका आयुष्य खत्म होने पर इंद्र ब्रह्मा चंद्र वरुण अग्नि सब देवी देवताएं को मृत्यु है। यस, तो हमें भी हमारा नित्य काम कार्य करना है और भगवान को साथ लेके। नरसिंह मेहता का भजन है, सुख दुख मन मान आनिए घट साथे रे घड़िया, टाड़िया ते कोई ना नव टड़े रघुनाथ ना जड़िया। सो धन्यवाद करता हूँ, हरे कृष्णा।